Thank you, Elder Nielsen, for the remarkably.
Elder Nielsen, आपका शुक्रिया. सुरक्षा रस्सी, कवच या किसी प्रकार के पर्वतारोहण उपकरण के बिना दो भाइयों जिमी जिसकी उम्र 14 और जॉन जिसकी उम्र 19 है, उनके असली नाम यहाँ नहीं ले गए हैं, ने मेरे पैदाशी स्थान दक्षिणी यूटा के स्नो कैनियन स्टेट पार्क में एक दीवार की खड़ी चढ़ाई को चढ़ने का प्रयास किया था. अपने कड़े परिश्रम से शिखर के निकट तक पहुंचकर वे पाते हैं कि एक उभरा हुआ किनारा कुछ मीटर की दूरी पर दीवार के शिखर तक पहुंचने में बाधा डाल रहा था. वे न तो उसके पार जा सकते थे और न ही वे अब नीचे उतर सकते थे. वे बीच में लटक रहे थे. कुछ समय ध्यान से प्रयास करने के बाद जॉन को पैर रखने के लिए इतना स्थान मिल गया जिससे वो अपने छोटे भाई को उभरे हुए किनारे के ऊपर सुरक्षित ढकेल सके. लेकिन स्वयं को ऊपर पहुंचने का कोई तरीका नहीं था. जितना वो अपना हाथ या पैर रखने के लिए जोर डालता उतना ही उसके मांसपेशियों में दर्द होने लगता था. वो बहुत घबरा गया और उसने अपने मृत्यु का भय सताने लगा. अधिक देर तक पकड़े रहने में असमर्थ होते हुए जॉन ने सीधी छलांग लगाने का और छज्जे को पकड़ने के एकमात्र विकल्प को करने की कोशिश का निर्णय लिया. यदि सफल हुआ तो वो अपने हाथ की ताकत से स्वयं को सुरक्षित ऊपर खींच लेगा. उसने स्वयं के शब्दों में उसने कहा था, छलांग लगाने से पहले मैं जिमी से बोला वो वृक्ष की मजबूत शाखा की खोज करें ताकि मुझे नीचे आने के लिए पकड़ा सके. यद्यपि मैं जानता था उस चट्टान की चोटी पर ऐसा कुछ नहीं था, यह केवल उसका ध्यान हटाने के लिए एक चाल थी. यदि मेरी छलांग असफल होती तो कम से कम मैं निश्चित हो सकता था कि मेरा छोटा भाई मुझे नीचे गिरकर मरते हुए नहीं देख पाएगा. उसे दृष्टि से दूर जाने के लिए पर्याप्त समय देते हुए मैंने अपनी अंतिम प्रार्थना कही कि मेरे परिवार समझे कि मैंने उनसे प्रेम करता हूं और कि जिमी अपने आप सुरक्षित वापस घर पहुंच सके. लांग लगाई, इतनी ताकत से कूदा कि मेरी बाहें लगभग मेरी कोहनियों तक किनारे के ऊपर पहुंच गई. लेकिन जैसे ही मैंने अपने हाथों को किनारे की सतह पर पटका, मेरे हाथ सपाट पत्थर पर रेत के अलावा कुछ न लगा. मैं अभी भी वहां लटके हुए रेत की किरकिराहट को याद कर सकता हूं. वहां पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, ना कोई उभरा सिरा, ना कोई कोना. मैंने अपनी उंगलियों को धीरे धीरे रेतीली सतह पर फिसलते हुए महसूस किया. मैं जान गया था मेरा जीवन समाप्त होने वाला है. लेकिन अचानक गर्मियों के तूफान में बिजली चमकने के जैसे दो छोटे हाथ ऊपर चट्टान के किनारे से निकल आए और आकर आकार से अधिक ताकत के साथ मेरी कलाइयों को मजबूती से पकड़ा. मेरा विश्वासी भाई किसी झूठ मूठ के वृक्ष की टहनी खोजने नहीं गया था. ये अनुमान लगाते हुए कि मैं क्या करने की योजना बना रहा था, वो वहां से एक इंच भी नहीं हिला. वह केवल इंतजार कर रहा था, चुपचाप लगभग सांस रोके, अच्छी तरह से जानते हुए कि यदि मैं उस छलांग को लगाता हूं तो ये मेरी मूर्खता होगी. जैसे ही मैं कूदा उसने तुरंत लपक कर मुझे पकड़ लिया और मुझे गिरने नहीं दिया.
those strong brotherly arms,
भाई के उन मजबूत स्नेह में बाहों ने उस दिन मेरा जीवन बचा लिया जब मैं ऊंचाई पर असहाय लटका हुआ था, जहां से गिरकर मेरी मृत्यु लगभग निश्चित थी। आज ईस्टर रविवार है मेरे भाइयों और बहनों। हालांकि हमेशा याद रखना चाहिए, हम अपनी साप्ताहिक प्रभु भोज प्रार्थना में प्रतिज्ञा करते हैं, फिर भी ये दिन हमारे भाई यीशु के स्नेह में और मजबूत प्रयासों को विशेष रूप से याद करने के लिए साल का अति पवित्र दिन है, जो हमारी आत्मिक और शारीरिक मृत्यु की अधीनता के बावजूद हमारी मदद करता है और हमें हमारी असफलताओं और कमियों और हमारे दुखों और पापों से बचाता है। संदर्भ मैं उपयोग कर रहा हूँ, जैसा कि जॉन और जिमी के परिवार ने बताया है, मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित और पुनरुत्थान के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूँ और परमेश्वर की दिव्य योजना की घटनाओं को स्वीकार करता हूँ कि जो उस प्रेम के परिणाम स्वरूप होती है और अर्थपूर्ण बनाती है जिसे यीशु हमें अर्पण करता है। हमारे बढ़ते हुए सांसारिक समाज में आदम और हव्वा या नश्वरता में उनके सौभाग्यशाली पतन के बारे में बातें करना असामान्य और अप्रचलित है। फिर भी सरल सच्चाई है कि हम मसीह के प्रायश्चित और पुनरुत्थान को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते और हम पर्याप्त रूप से उसके जन्म या उसकी मृत्यु के विशिष्ट उद्देश्य को नहीं समझ सकेंगे। अन्य शब्दों में, सही मायने में क्रिसमस या ईस्टर को मनाने का कोई अर्थ नहीं है, नहीं बिना ये समझते कि सचमुच में आदम और हव्वा थे जो पतन के सभी प्रभावों के साथ अदन की वाटिका से निकाले गए थे। मैं नहीं जानता उससे पहले इस ग्रह पर क्या हुआ था, लेकिन मैं जानता हूं कि इन दोनों को परमेश्वर के दिव्य हाथों के अंतर्गत रचा गया था कि कुछ समय के लिए वे स्वर्ग में रहे थे, जहां ना तो मानव मृत्यु थी न ही परिवार की कोई संभावना, और कि कुछ चुनावों के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके कारण उन्हें अदन की वाटिका का छोड़ना पड़ा, लेकिन जिसने उन्हें शारीरिक मृत्यु से पूर्व बच्चे पैदा करने के योग्य बनाया। उनकी परिस्थिति में अतिरिक्त दुख और जटिलता उनके उल्लंघन के आत्मिक परिणाम स्वरूप भी हुए, उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए अलग कर दिया गया, क्योंकि हम तब पतित संसार में पैदा हुए और क्योंकि हम से भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता है गया। That Adam and Eve faced. What a plight. कितनी चिंताजनक परिस्थिति है। संपूर्ण मानव जाति तेजी से, प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चा शारीरिक रूप से स्थायी मृत्यु की ओर जा रहा है, आत्मिक स्वरूप से अनंत दुख की ओर जा रहा है। क्या जीवन का अर्थ यही था? क्या यही मानव अनुभव का अंतिम परिणाम है? क्या हम सभी किसी उदासीन संसार में चट्टान के बीच लटक रहे हैं? हम में से प्रत्येक मदद के छोटे से स्रोत की खोज कर रहा है। हम में से प्रत्येक कुछ कस कर पकड़ने की तलाश कर रहा है, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा सिवाय हमारी उंगलियों के नीचे फिसलती रेत के। हमें बचाने के लिए कुछ नहीं है, पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, और निश्चित रूप से हमें थामे रखने के लिए कुछ नहीं है। क्या जीवन में हमारा एकमात्र उद्देश्य निरर्थक अस्तित्व अनुभव है? मात्र उस उपलब्धि को प्राप्त करना जो इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, लगभग 70 साल तक जीवन पूरा करना, फिर असफल होना और गिरना और हमेशा गिरते रहना।
answer to those questions.
इन प्रश्नों के उत्तर अस्पष्ट और अनंत न है. प्राचीन और आधुनिक भविष्य वक्ताओं के साथ मैं गवाही देता हूं कि हर बात उसने ज्ञान के अनुसार की गई है जो सब बातों को जानता है. इस प्रकार जिस क्षण से वो प्रथम पिता आदम की वाटिका से बाहर निकले थे, परमेश्वर और हम सब पिता ने आदम और हव्वा के निर्णय का पूर्व अनुमान करके उन्हें बताने के लिए स्वर्ग से स्वर्ग दूत भेजे थे और समय के साथ हमें दर्शाने के लिए कि ये सब सिलसिले वार घटनाएं हमारी अनंत खुशी के रची गई हैं. यह उसी दिव्य योजना का हिस्सा था जिसने एक उद्धारकर्ता उपलब्ध कराया, स्वयं परमेश्वर का वास्तविक पुत्र अन्य आदम, जैसा प्रेरित पौलुस उसे कहता है, जो समय की मध्यस्थता में प्रथम आदम के उल्लंघन का प्रायश्चित करने आएगा. यह प्रायश्चित शारीरिक मृत्यु पर संपूर्ण विजय प्राप्त करेगी, बिना शर्त के प्रत्येक व्यक्ति को पुनरुत्थान प्रदान करते हुए जो इस संसार में पैदा हुआ है या कभी होगा. अनुग्रह पूर्वक यह आदम से लेकर संसार के अंत तक सभी को व्यक्तिगत पापों से क्षमा भी उपलब्ध कराएगा, पश्चाताप और दिव्य आज्ञा के प्रति आज्ञाकारिता की शर्त पर. उसके नियुक्त गवाहों में से एक के रूप में मैं सिस्टर सुबह घोषणा करता हूं कि नासरत का यीशु संसार का उद्धारकर्ता था, वह अंतिम आदम हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, अनंत जीवन का अल्फा और ओमेगा है. जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, पौलुस ने घोषित किया था, और ऐसा ही भविष्यवक्ता कुलपति लेही ने किया था. आदम का पतन हुआ ताकि मनुष्य हो, और मसीहा समय की परिपूर्णता में आएगा ताकि वो मानव संतान को पतन से मुक्त कर सके. सबसे अच्छी तरह से मॉर्मन की पुस्तक की भविष्यवक्ता यीशु के प्रायश्चित पर याकूब 2 दिन के उपदेश के रूप में सिखाता है कि पतन के कारण मनुष्य का पुनरुत्थान जरूरी है. तो आज के दिन हम प्रत्येक असफलता जो हमने कभी अनुभव की है, प्रत्येक दुख जो हमने महसूस किया है, प्रत्येक निराशा जो कभी हम पर हुई थी, प्रत्येक डर जिसका कभी हमने सामना किया है, और अवश्य ही हम मृत्यु से पुनः जीवन और हमारे पापों के लिए क्षमा पर विजय के उपहार को मानते हैं. यह विजय 2000 साल पहले यरूशलेम में इसी तरह के समाप्त हुई घटनाओं के कारण हमें उपलब्ध है.
Beginning in the spiritual anguish of the
Gethsemane के बाग में आरंभ हुई आत्मिक पीड़ा कैलवरी पर क्रूशारोहण तक पहुंची, और सुंदर रविवार सुबह दान की गई कब्र में समाप्त हुई. एक पाप रहित शुद्ध और पवित्र व्यक्ति, वास्तव में स्वयं परमेश्वर का पुत्र ने ऐसा चमत्कार किया जो किसी भी मृत व्यक्ति ने पहले न ही कभी किया और न ही कभी कर सकेगा. अपनी स्वयं की शक्ति द्वारा वह मृत्यु से जी उठा, अपनी आत्मा को कभी भी उसके शरीर से अलग किए जाने के लिए अपनी स्वयं की इच्छा से उसने अपने शरीर के कफन का कपड़ा हटा दिया जिसमें उसे रखा गया था. ध्यान से कफन का अंगोछा जो कि उसके सिर से बांध दिया था एक जगह लपेटा हुआ रखा था. धर्मशास्त्र बताते हैं प्रायश्चित और पुनरुत्थान की वह 3 दिन की सिलसिलेवार घटनाएं जिनका ईशो ने अनुभव किया था अति महत्वपूर्ण क्षण अत्यधिक असाधारण बलिदान, अत्यधिक प्रभावशाली दिव्य प्रेम का प्रदर्शन जो कि विश्व के इतिहास में कभी दर्शाया गया था। यीशु मसीह ने दुख सहा, मर गया और जी उठा ताकि वह गर्मियों के तूफान में बिजली चमकने के जैसे अपने दो मददगार हाथों को हमारी ओर बढ़ा सके। स्नेह में भाई के दो हाथ हमें मजबूती से थामने के लिए और उसके प्रति हमारी वफादारी के द्वारा हमें अनंत जीवन के लिए ऊपर लेने के लिए। प्रायश्चित और पुनरुत्थान की वो तीन दिन के सिलसिलेवार घटनाएं जिनका यीशु ने अनुभव किया था, अति महत्वपूर्ण क्षण, अत्याधिक असाधारण बलिदान, अत्याधिक प्रभावशाली दिव्य प्रेम का प्रदर्शन जो कि विश्व के इतिहास में कभी दर्शाया गया था। यीशु मसीह ने दुख सहा
this Easter. I thank him.
And the this Easter, मैं उसका और पिता जिसने हमें दिया धन्यवाद करता हूँ कि यीशु आज भी मृत्यु पर विजयी है, यद्यपि वो घायल पैरों पर खड़ा है। इस ईस्टर पर मैं उसका और पिता जिसने हमें दिया धन्यवाद करता हूँ। यीशु आज भी हमें असीमित अनुग्रह देता है, यद्यपि उसकी हथेलियों पर घाव के निशान है। ईस्टर में उसका और पिता
इन द सेक्रेड नेम ऑफ द रेजरेक्टेड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आमेन।
यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमेन।